الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، میرے حوض کوثر پر قیامت کے دن کچھ گروہ آئیں گے جنہیں میں کثرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آج پھر ہم اپنے سلسلے درس بخاری شریف میں خوش آمدید کہتے ہیں. اصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عمله، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اسلام چونکہ ایک مکمل دین ہے اور انسانی زندگی کے ہر شعبے پر اس کا حکم نافذ ہوتا ہے. جہاں عبادات کے طریقے بتاتا ہے، وہیں معاملات کے متعلق بھی پوری پوری رہنمائی کی جاتی ہے، تاکہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ تشنا باقی نہ رہے اور مسلمان کسی بھی عمل میں اسلام کے سوا کسی دوسرے کا محتاج ہی نہ رہے. جس طرح عبادات کے اندر بہت ساری صورتیں ہیں کہ جو جائز ہیں، اور بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جو ناجائز بھی ہیں، اسی طرح تحصیل مال کی بھی بعض صورتیں جائز ہیں اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جو ناجائز ہیں. اور حلال روزی کی تحصیل اس بات کے اوپر موقوف ہے کہ جائز اور ناجائز تمام کے تمام طریقوں کو انسان پہچان لے، انہیں جان لے اور انہیں سیکھ لے، اور پھر سیکھنے کے بعد جو جائز طریقے ہیں ان پر عمل کرے، انہیں اپنے وجود پر اپنی زندگی میں نافذ کر دے، اور جو ناجائز طریقے ہیں ان سے انسان کو چاہیے کہ دور بھاگے، کیونکہ جو ناجائز راستے، ناجائز ذرائع اور اسباب ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کرنے والے ہیں. لہذا اس پر پھر لازم ہو جاتا ہے کہ ان ناجائز طریقوں سے دور بھاگ جائے. قرآن مجید میں ناجائز طور پر مال حاصل کرنے کی سخت ممانعت فرمائی گئی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فرمایا، آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ حق نہ کھاؤ، اور حکام کے پاس اس کے معاملے کو اس لیے نہ لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ جانتے ہوئے کھا جاؤ. اور مزید ایک مقام پر اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. فرمایا، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، ہاں اگر باہمی رضامندی سے تجارت ہو تو پھر حرج نہیں. مدنی چینل کے ناظرین، باطل طریقے سے مال کھانے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ سود کا لین دین بھی ہے. جی ہاں، اور اس کی مذمت قرآن میں بھی ہے اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی ہے. बल्कि हदीस मुबारका में एक मिसाल देकर इसकी मुजम्मत को बयान किया गया। आइए दरसे बुखारी शरीफ के इस सिलसिले में हम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब अल जामिउ सहीद अल बुखारी से एक हदीस मुबारक आपको बयान करते हैं। यह हदीस मुबारक हजरत सामूरा बिन जुंदुब रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। आपने फरमाया, قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने शब्बे मेराज में देखा कि दो शख्स मुझे अर्ज मुकद्दस यानी बैतुल मुकद्दस ले गए, फिर हम आगे चल दिए यहां तक कि हम खून की एक नहर पर पहुंचे जिसमें एक शख्स खड़ा हुआ था और नहर के किनारे पर दूसरा शख्स एक और खड़ा हुआ था और इसके सामने कुछ पत्थर रखे हुए थे। فأقبض الرجل الذي في النهر فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان। فرمایا نہر میں موجود شخص جب بھی باہر نکلنے کا ارادہ کرتا تو کنارے پہ جو شخص کھڑا ہوا تھا وہ ایک پتھر اٹھاتا اس کے منہ پر مار دیتا اور پھر اسے اسی جگہ پر لوٹا دیتا جہاں سے وہ چلنا شروع ہوا تھا। فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ। फिर फरमाया, فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ। इसी तरह फिर बार बार यही सिलसिला होता रहा और मैं देखता रहा, जब भी वो नहर वाला शख्स किनारे पर आने की कोशिश करता इरादा करता तो दूसरा वो शख्स के जो किनारे पे खड़ा हुआ था और उसके सामने पत्थर थे वो पत्थर उठाता इसे मारता और जहां से ये चला था उसी जगह पर इसे दोबारा लुटा देता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने कहा, फकुल्तु मा हाजा, ये नहर में जो शख्स है ये कौन है? तो मुझे बताया गया, फकाल अल्लज़ी रअयतहु फिन्नहरि आकिलुर रिबा। तो जवाब ये मिला कि ये जिसे आपने नहर में देखा है वो शख्स के जो बाहर निकलने की कोशिश करता है और जब भी इरादा करता है इसे पत्थर मारकर दोबारा उसी जगह पर लुटा दिया जाता है। फरमाया, ये शख्स नहर में खड़ा होने वाला ये सूद खाने वाला शख्स है। अल्लाह अकबर। मदनी चैनल के नाज़रीन, इस हदीस मुबारक में सूद जिसे शरीयत मुतहरा ने न सिर्फ नजायज़ो हराम करार दिया है बल्कि इसकी सख्त मुजम्मत को बयान किया और इससे सख्त ममानत फरमाई, बल्कि इसे हासिल करने वालों की शदीद मुजम्मत इस अंदाज में बयान फरमा दी कि लोग इससे दूर भागें और नफरत का इजहार करें। अगर देखा जाए तो लुगत में रिबा या सूद के जो माना है ये ज्यादती बढ़ोतरी और बुलंदी के होते हैं कि माल गोया बज़ाहिर बढ़ता हुआ नजर आता है। और सूद की तारीफ पर अगर जाएं तो उलामा ने मुख्तलिफ इसकी तारीफें बयान फरमाई। सदर शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अक़्दे मुआवजा में जब दोनों तरफ दो फरीक बैठे हैं एक अक़्दे मुआवजा करने लगे हैं, दोनों तरफ माल हो, एक तरफ एक ऐसी ज्यादती कर दी जाए कि उसके मुकाबले में दूसरी तरफ कुछ ना हो, तो फरमाया ये सूद है। सूद का लेन देन करने वालों का जो अंजाम है एक मिसाल के जरिए से हमें बयान फरमा दिया गया। बल्कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी अगर आप आयात बजीनात का मुताला करते हैं, कुरान की किरात करते हैं, तो आपको ऐसी मिसालें नजर आएंगी कि जो हमें गुनाहों से रोकने के लिए बयान की गई, जैसा कि सूद के बारे में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس। सूद खोर कयामत के दिन उस शख्स की तरह खड़ा होगा जिसको शैतान ने छूकर मजनून बना दिया, पागल कर दिया। तो चूंकि मिसाल को बयान करने का एक मुसल्लमा उसूल है कि अच्छी चीज की मिसाल अच्छी चीज के साथ दी जाती है, और हकीर चीज जो होती है उसकी मिसाल भी हकीर चीज से, अदना चीज से दी जाती है। तो सूद का जो लेन देन करना है, इसे खाना है, चूंकि ये हराम है, इसीलिए सूद खोर की जो मिसाल है वो पागल शख्स के साथ दी गई है। जो मखबूतुल हवास होता है ये पागल होता है, गिरता पड़ता नजर आता है, कपड़े फाड़ता हुआ नजर आता है, बिल्कुल ऐसा जैसे इसी का कोई हाल नहीं होता। जब कयामत के रोज अल्लाह तबारक व ताला लोगों को दोबारा जिंदगी बख्शेगा, यानी मरने के बाद जब दोबारा उठाए जाएंगे, तो तमाम लोग अपनी कब्रों से जल्दी जल्दी निकलेंगे सिवाय सूदखोरों के। वो जब भी खड़े होंगे तो अपने मुंह, पीठ और पहलुओं के बल गिर पड़ेंगे, जैसे एक पागल शख्स गिरता हुआ नजर आता है, कभी इधर कभी बाएं, कभी दाएं, कभी आगे कभी पीछे, कभी सहारे लेता है, लड़खड़ाता हुआ नजर आता है, एक दीवाना शख्स उसकी तरह हो जाएगा। और इसकी वजह क्या है? फरमाया इसकी वजह यह है कि जब दुनिया में मकरो फरेब और खुदा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुखालफत मोल लेकर हराम और सूद से अपने पेट को ये भरता रहा, तो वो जब माल इसके पेट में जाता रहा तो पेट भी बढ़ता रहा, और फिर उस वक्त इस कदर बढ़ चुका होगा कि इसके बोझ से लोगों के साथ खड़े होने के भी काबिल ये नजर नहीं आएगा। बस जब भी लोगों के साथ तेज तेज मिलकर चलने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? औंधे बल जमीन पर गिर जाएगा, पीठ के बल जमीन पर गिर जाएगा, दाएं बाएं अपने पहलुओं के बल जमीन पर गिर जाएगा, और फिर दोबारा उनसे पीछे रह जाएगा। और यह भी एक मुसल्लमा बात है कि जब भी वो गिरेंगे तो एक आग उन्हें मैदान महशर की जानिब हांकेगी, और इस तरह भी इनके अजाब के अंदर मजीद इजाफा हो जाएगा। इस तरह अल्लाह तबारक व ताला इन पर दो बहुत बड़े अजाब मुसल्लत फरमा देगा, यानी एक अजाब तो इनका चलने में बार बार गिरना है और लोगों से पीछे रह जाना है और दीवानेपन का जो मुजाहरा है वो नजर आएगा, और दूसरा आग की तपश और लिपटों का इनको हंकाना है, यहां तक के मैदान महशर में वो पहुंच जाएंगे। तो अपनी लड़खड़ाहट और अपनी जुनूनी कैफियत की बिना पर वहां मौजूद जितने भी अफराद होंगे तमाम के दरमियान में ये पहचाने जाएंगे, पता चल जाएगा कि ये शख्स के जिसकी जुनूनी कैफियत है, वो के जो लड़खड़ाता हुआ पहुंचा है, जिसके अंदर एक दीवानेपन का इजहार हो रहा है, जो पागल है, ये शख्स सूदखोर है। और दुनिया में बाज औकात सूदखोर की यह हालत हो जाती है कि रोज रोज की परेशानियां, जिल्लत और रुसवाई की वजह से तंग आकर खुदकुशी जैसी हराम मौत मर जाते हैं। तो ये वो चीज है जिसे इस्लाम ने पहले ही बड़ी शिद्दत के साथ हराम करार दे दिया। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, हम सब पर लाजिम है कि हम सूद से बच जाएं, कि बड़े बड़े कारखानों, फैक्ट्रियों, बंगलों और कोठियों के मालिक इसी सूदी चक्कर में पिस कर बिल्कुल बेकारी और फकीर बने हुए नजर आते हैं। फैक्ट्रियां बिक जाती हैं, बंगले बिक जाते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, कारें बिक जाती हैं, और वही लोग जिनके पास सैकड़ों की तादाद में नौकर हुआ करते थे, फिर सूदखोरी की वजह से एक जमाना आ जाता है कि यही लोग दूसरों के पास जाकर मुलाजमत करते हुए नजर आते हैं। तो ये सूद की वो लानत है जिसकी वजह से आदमी दुनिया में ही हलाको बर्बाद हो जाता है। आइए मदनी चैनल के नाजरीन, चंद एक अहादीस मुबारका इस हवाले से समाप्त फरमाइए। हजरत सैयदना कतादा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाया कि सूद खोर को कयामत के दिन जुनून की हालत में उठाया जाएगा कि इसके सूद खाने के बारे में सब अहले महशर जान लेंगे, यानी इसकी हालत, इसकी जुनूनी कैफियत, इसका लड़खड़ाना और गिर जाना, पहलुओं के बल आ जाना, ये जो इसकी हालत होगी यही बात ये जाहिर कर देगी कि ये वो शख्स है कि जो दुनिया में सूद खाने वाला था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन गुनाहों से बचो जिनकी मगफिरत नहीं होगी। उनमें पहला धोखा है। धोखा वो गुनाह है कि इंसान दुनिया में जिस किसी भी शय के जरिए धोखा देता है, कयामत के रोज इस बंदे के सामने आ जाएगी। और दूसरी फरमाया कि सूदखोरी है, जिसने भी दुनिया में सूद खाया उसे कयामत के दिन जुनून की हालत में उठाया जाएगा। और एक हदीस मुबारक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चार अफराद ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ना तो उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा और ना ही जन्नत की नेमतें उन्हें चखाएगा। वो चार अफराद कौन से हैं? उनमें फरमाया, एक शराबी आदि, यानी ऐसा शराब पीने वाला कि जिसकी शराब पीना आदत बन चुकी है, और दूसरा सूदखोर है, तीसरा यतीम का माल ना हक खाने वाला, और चौथा वालिदैन की नाफरमानी करने वाला। और एक हदीस मुबारक में फरमाया, सूद का गुना 70 दर्जे है, इनमें से जो सबसे कम है वो ये है कि आदमी अपनी वालिदा के साथ बदकारी करे। सूद का अंजाम कमी और खसारा होता है। जी हां, बजाहिर तो लग रहा है कि माल बढ़ रहा है, लेकिन हकीकत में माल बढ़ नहीं रहा होता, बल्कि उसमें जंग लग रहा होता है, उसमें सेक लग रही होती है। फिर अचानक क्या होता है, वो सारा का सारा सामान मलिया मेट हो जाता है। और ये फैसला कुरान का है। अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ्फारिन असीम। अल्लाह तबारक व ताला हलाक करता है सूद को और बढ़ाता है खैरात को, और अल्लाह को पसंद नहीं आता कोई नाशुकरा बड़ा गुनहगार। यानी अल्लाह तबारक व ताला सूदखोरों के मामले को इनके मकसूद के बरअक्स मलिया मेट कर देगा, क्योंकि मकसूद तो यह था कि माल बढ़ जाए, यह मकसूद के बिल्कुल बरअक्स हुआ, और सूदखोर को बरकत से खालिक कायनात बिल्कुल महरूम कर देता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने एक मरतबा फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला सूदखोर का ना तो सदका कबूल करता है, ना हज कबूल फरमाता है, ना जिहाद कबूल फरमाता है, और ना ही इसका रिश्तेदारों के साथ किया हुआ हुस्ने सुलूक अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। तो चूंकि इन्होंने अल्लाह तबारक व ताला की नाराजगी और गजब की परवाह न करते हुए माल की ज्यादती को तरजीह दी, तो बस फिर वो न सिर्फ उस ज्यादती बल्कि असले माल को भी खत्म फरमा देगा, यहां तक कि जो इनका अंजाम है वो इंतहाई फकर हो जाएगा, जैसा कि अक्सर सूद खोरों का मुशाहदा भी किया गया है। अगर फर्ज कर लें कि वो इसी धोखे में मुबतला होकर इस दारे फानी से चल बसा, तो अल्लाह तबारक व ताला उसके वारिसों के हाथों उसका माल तबाह बर्बाद कर देगा, फिर थोड़ी ही मुद्दत के बाद इंतहाई फकर और जिल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर बन जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके माल में भी सूद से इजाफा होगा उसका जो अंजाम है वो कमी पर ही होगा। कोई भी शख्स, उसके माल में इजाफा होता है, अब ये जो इजाफा है अगर वो सूद की वजह से हुआ है तो फरमाया उसका अंजाम फिर कमी और खसारे के ऊपर हो जाएगा, और फिर आखिरत में मदनी चैनल के नाजरीन तबाही बर्बादी सूदखोर का मुकद्दर होती है। कोई भी मदनी चैनल के नाजरीन अपना माल साथ लेकर नहीं जाता, पीछे छोड़ जाता है, जितना इकट्ठा किया वो सब पीछे रह गया। लिहाजा इसके सबब इस पर अपना और अपने पैरोकारों का भी वबाल और अजाब अलीम होगा। इसीलिए मनकूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो मुसीबतें ऐसी हैं कि कोई भी इनकी मिसल से दो चार ना होगा। वो दो मुसीबतें कौन सी हैं? उनमें पहली जो मुसीबत है, फरमाया तमाम का तमाम माल छोड़ जाना, और दूसरा फिर इस पर सजा भी पाना, यानी माल भी पीछे रह गया और फिर इसके ऊपर सजा भी मिल रही है, फरमाया ये दो मुसीबतें ऐसी हैं कि कोई भी इनकी मिसल से दो चार ना होगा। सही हदीस के अंदर यह बात मौजूद है, अग्निया जन्नत में फुकारा से 500 साल बाद दाखिल होंगे। तो जब माले हलाल की वजह से अग्निया की यह हालत है कि फुकारा से 500 साल के बाद जन्नत में दाखिल होंगे, तो जरा सोचिए जिनका कारोबार ही हराम है उनका क्या हाल होगा। अल मुख्तसर ये कि ये सब वो हलाकतें और बर्बादियां हैं, नुकसान और घाटे हैं और जिल्लतें और रुस्वाइयां हैं जिनका इसे यानी सूद खोर को सामना करना पड़ेगा। मदनी चैनल के नाजरीन, सूद से बाज न आने वाला अल्लाह तबारक व ताला से जंग करने वाला है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाने बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाह व रसूलिह। फरमाया ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और छोड़ दो जो बाकी रह गया सूद अगर मुसलमान हो, फिर अगर ऐसा न करो तो यकीन कर लो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लड़ाई का। यानी अगर तुम ईमान वाले हो तो सूदी कारोबार से पहली बात तो यह है अल्लाह से डरते हुए बाज आ जाओ, और अगर इससे ना रुके तो अल्लाह तबारक व ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एलाने जंग कर दो, और जिसने भी ऐसा किया तो वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। इस हर्फ से मुराद क्या है जो कुरान मजीद फुरकान हमीद की आय मुबारका में बयान की, इससे मुराद क्या है? फरमाते हैं या तो इससे मुराद दुनियावी जंग है और या फिर इससे मुराद उखरवी जंग है। दुनियावी जंग क्या है और उखरवी जंग क्या है, इसके बारे में भी वजाहत फरमाई। फरमाते हैं दुनियावी जंग से मुराद यह है कि शरीयत मुतहरा नाफिज करने वाले हुक्काम पर लाजिम है कि जब इन्हें किसी के बारे में सूद लेने का पता चले तो उसे कैद कर दें यहां तक कि वो तोबा कर ले। लेकिन अगर सूद खोर साहिब हसीयत और जी हशम हो कि तुम इस पर जंग किए बगैर कुदरत हासिल नहीं कर सकते तो इसी तरह जंग करो जैसे हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मानईन ज़कात के साथ जंग की थी। और उखरवी जंग से मुराद ये है कि अल्लाह तबारक व ताला उसका खातिमा बुराई पर फरमाएगा, क्योंकि जिसने भी अल्लाह तबारक व ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जंग की तो उसका खातिमा बिल खैर किस तरह हो सकता है। एक बंदा रब से लड़ाई करता है और उसके रसूल के खिलाफ जंग करता है तो उसका खातिमा ईमान पर कैसे हो सकता है? ईमान पर खातिमा तो तब हो कि जब ये अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी करता है। नीज अल्लाह तबारक व ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करना दर हकीकत उसकी रहमत के मकामात से दूरी है। बंदा अल्लाह से जंग करता है, अल्लाह की रहमत के मकामात से गोया इसे दूरी हो जाती है और बदबख्ती की अथाह गहराइयों में ये शख्स गिर जाता है। बदबख्ती इसका मुकद्दर बन जाती है क्योंकि इसने अल्लाह की इताअत नहीं की और रसूलुल्लाह की इताअत से मुंह को मोड़ लिया। जबकि हकीकी कामयाब कौन है? फरमाया हकीकी कामयाब वो है जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमा बरदारी में अपनी जिंदगी को बसर कर देता है। इसलिए मदनी चैनल के नाजरीन, हमें चाहिए कि हर वक्त अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरते रहें और ये देखें कि हमने आगे के लिए क्या भेजा है। दुनिया का माल तो दुनिया में रह जाएगा, सूद के जरिए से कमाया, रिश्वत का लेन देन किया, किसी का माल गसब कर लिया, चोरी कर लिया, हराम जितने भी जराए इख्तियार करेंगे वो माल सारा का सारा दुनिया में रह जाएगा, हम साथ लेकर हरगिज भी नहीं जा पाएंगे। और आज तक तारीख इस बात पर गवाह है कि जिसने भी कमाया वो औरों के ही काम आया। तो जब ये माल औरों के ही काम आना है, हम अपने साथ नहीं ले जा सकते, तो हमें क्या जरूरत है कि हम अपने रब अज़्ज़ा वजल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में जिंदगी बसर करें। यकीनन कामयाबी यह है कि इंसान अल्लाह को राजी करे, और जिसने भी दुनिया में अपने रब को राजी किया अल्लाह तबारक व ताला उससे राजी हो गया और दुनिया और आखिरत में कामयाबी उस बंदे का मुकद्दर बन जाती है। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको हकीकत समझकर इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाह नबी जिल आमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसहाबिहि वबारिक वसल्लम।
ईमान।